मुश्किल अल्फाज की वजाहत, उनका मादा। सूरत अल माईदा आयत नंबर 109। यौमा यजमाऊ, यौमा दिन के लिए इस्तेमाल होता है, यही इसका मादा है, इसकी जमा है अय्याम, दिनों को कहते हैं। यजमाऊ, जीम मीम आइन, जमा करना, इकट्ठा करना, इसके लिए कुरान में 10 लफ्ज आए हैं और उसका पहला जो दर्जा है वो है जीम मीम आइन। जमा का लफ्ज एक ही चीज के मुख्तलिफ अज्जा को या मुख्तलिफ चीजों को इकट्ठा करने के लिए आता है। वो चीजें जानदार भी हो सकती हैं, बेजान भी, दोनों तरह ये लफ्ज जो है वो इस्तेमाल होता है, जानदार चीजों के लिए भी और बेजान चीजों के लिए भी। जैसे माल को जमा करने के लिए अल्लज़ी जमा मालहू अददा, फिर इसी तरह जो है वो कुफार का लश्कर जो है वो जब जमा हुआ, अल्लज़ीना क़ाल लहुमुन नासु इन्नन नास कद जमाऊ लकुम, तो सूरत आल इमरान आयत 173 में ये जानदारों को जमा करने के लिए इस्तेमाल हुआ है, और इसी तरह सूरत अल हुमज़ा आयत नंबर 2 में ये माल के जमा करने के लिए इस्तेमाल हुआ है। तो बहरहाल जो है ये जानदार और बेजान दोनों के जमा करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जमा करना, इकट्ठा करना। और रसूला, रसूला जो है इसका वाहिद क्या है, क्या है वाहिद? रसूल का वाहिद है, अर रसूल का वाहिद है रसूल, और जमा है इसकी रसूल। फयकूलु, यकूल का रूट क्या है? शाबाश, काफ वलाम कौल से है, इसकी फैमिली के बहुत से लफ्ज आप कुरान में पढ़ चुके हैं और इसी आयत में भी कालू है। उजिब तुम अहम है, और आप इसे पहले भी पढ़ चुके हैं, इसका रूट है जीम वो बा, जॉब, जॉब, इसके मानी है जवाब देना। अब आप देखिए कि ये लफ्ज जो है ये दो तरह इस्तेमाल हुआ है, एक है जैसे तराशने के लिए भी ये इस्तेमाल होता है, तराशना, और दूसरा मैंने कहा कि जवाब देना। अब सवाल ये पैदा होता है कि जब तराशने के लिए इस्तेमाल होता है तो कैसे, और जवाब देने के लिए इस्तेमाल होता है तो इसका अंदाज जो है वो क्या होता है। तो इस सिलसिले में जो बुनियादी बात याद रखने वाली है वो ये है कि तराशने का के लिए क्या है, जैसे जीम वोबा, उसके लफ्जी मानी है सुराख करना, शगाफ करना, फिर उसे छील छाल कर दुरुस्त करना, तो इसे जो है वो आप सूरत अल फजर में पढ़ेंगी और जिन्हें 30वां पारा हिफ्स है उनको अंदाजा ही होगा। वजाबु सखरा बिलवाद, तो जाबू तराशा उन्होंने शीला पहाड़ों, उसको पत्थरों को, वादी में जो पहाड़ थे, सखर थे, पत्थर थे, चट्टाने थी, उनको छील छाल कर उन्होंने जो है फिर वो अपने महल बनाए और अपने घर बनाए। तो वहां पे ये इस्तेमाल हुआ है छीलने, तराशने, सुराख करने, छील छाल कर दुरुस्त करने के लिए। अब आप देखें कि इसी तरह अजाबा, यहां पे उजिब तुम, इसका रूट भी जीम वोबा है, और जब कहते हैं ना साला, सवाल किया, तो जब कोई सवाल करता है, कोई चीज मांगता है, कोई चीज पूछता है, तो उस सवाल का जवाब देने के लिए अजाबा का लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है। इसके क्या मानी है कि जब कोई चीज मांगता है, पूछता है सवाल, तो वो सवाल जो है वो आपके पास आया, आपके अंदर आया, आपने उसे कबूल कर लिया कि हाँ ये सवाल जो है मैं इसे कबूल करती हूँ, और कबूल करके क्या करती हैं कि फिर आप उसका जवाब देती हैं। तो ये भी उसी तरह से है कि जैसे जो है वो सवाल आपके अंदर चला गया, वैसे जो है वो तराशना जो है उसके माने क्या है, कता करना, सुराख करना। तो सुराख करके वादी में पत्थरों को तराशा जब गया तो उससे घर बनाए उन्होंने कौम समूद ने। इसी तरह जब कोई बात करता है, सवाल करता है, तो वो सवाल जो है फिजा को चीरता हुआ, फिजा में सुराख करता हुआ वो दूसरे के पास जाता है, और अब दूसरा उसको कबूल कर लेता है और फिर उसका जो है वो जवाब देता है, कि उसको दुरुस्त दरस करके सोच के फिर उसका जवाब देता है। तो बुनियादी तौर पर मानी एक ही है, तो इसलिए जब इसको आप याद करें तो इसको आप समझें कि किसी की बात या किसी का जुमला या किसी की का जो कॉल है वो भी फिजा में सुराख करता हुआ जो है वो जाता है और दूसरा बंदा उसको कबूल कर लेता है और फिर उसका जो है वो जवाब देता है। जैसे पत्थर जो है वो सुराख को जब कबूल करते हैं तो क्या है कि चट्टाने तराश कर महल बन जाते हैं। जब किसी को सवाल आप पूछते हैं और वो सवाल को कबूल कर लेता है और कबूल करने के बाद फिर उसका जवाब देता है। बहरहाल मैंने सोचा कि आपको ये बात पता चल जाए कि तराशना और जवाब देना एक ही बात है। माजा उजिब तुम, कि यहाँ पे फिर उजिब तुम का लफ्ज जो है वो इस्तेमाल किया गया है, ये माजी मजहूल का सीगा है जिसमें फाइल का नहीं पता चलता, ये माजी मजहूल का सीगा है। और आप देखें कि इन की फैमिली के दो लफ्ज हैं, एक इल्म है एक अल्लाम है, अल्लाम मुबालगे का सीगा है, बहुत ज्यादा इल्म रखने वाला। अलगुयूब गैब वाहिद है, अलगुयूब उसकी जमा है। फिर आयत नंबर 110 है और इसमें लफ्ज इस्तेमाल हुआ है मरियम का, मरियम, और मरियम जो थी हजरत मरियम अलैहिस्सलाम, ये कौन थी, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की जो है ये वालदा के लिए इस्तेमाल होता है, और कहते हैं कि ये इब्रानी जबान में अल्लाह की बंदी को कहते हैं, और इसका रूट है मीमरा या उजकुर का रूट है दाल काफरा, जिक्र करना याद करना उसके लिए लफ्ज इस्तेमाल होता है। नेमती, नेमत लफ्ज जो है ये इस जिन्स है, इसका रूट है नून आय मीम। अय्यतुका, और ये लफ्ज जो है आप पहले भी पढ़ चुकी हैं, इसका रूट क्या है, याद आ गया। और आप देखें कि हाथ के लिए इस्तेमाल होता है ना याद आलिया। अब आप जैसे जो है वो कोई जा रहा है, अब वो बूढ़ा है बुजुर्ग है, आप उसको क्या करती हैं, आप उसको अपना हाथ देती हैं, आप उसको कुव्वत देती हैं, आप उसकी मदद देती हैं, किसी को हाथ देना, किसी को सहारा देना, उसको कुव्वत देना। और वैसे ये कि एक तो ये है ना कि जिस्मानी तौर पर आप हाथ देती हैं तो कुव्वत दी, एक होता है कि कोई बात कर रहा है, अब जब बात कर रहे हैं तो आप उसको कुव्वत कैसे देती हैं, अपनी जबान से जुमला बोलकर उसकी ताईद करती हैं। तो इस तरह भी ये लफ्ज जो है वो ताईद करना, मदद करना उसके लिए इस्तेमाल किया जाता है। बिरूह है कुदुस, और यहां इससे मुराद जो है वो जिब्रील अलैहि सलाम है। तुकल्लिम काफ लामीम कलिमा, लफ्जी मानी है इसके जख्मी करना, और वैसे ये कि कलाम करने के लिए ये इस्तेमाल होता है, और बाज ये भी कहते हैं कि जिस तरह जो है वो बाज जुमले भी ऐसे होते हैं कि जब आप उन जुमलों को सुनती हैं तो क्या जैसे जख्म लग गया ना, तो इस तरह ये अल्फाज इस्तेमाल किया जाता है। वैसे कलाम से मुराद है मुंह से निकलने वाली जो अल्फाज हैं, गुफ्तगू हैं। अलमहद व कहल, ये लफ्ज जो है ये दोनों जो है वो एक दूसरे के ऑपोजिट है, एक है महद और दूसरा है कहल। महद का लफ्ज जो है ये गहवारे, बिछोने, जमीन, पंगूड़े, उसके लिए इस्तेमाल किया जाता है, इसकी जमा है मिहाद। कहल का लफ्ज ये काफ हालाम कहल, और ये इस्तेमाल होता है उधेड़ उम्र के लिए, जिनकी उम्र जो है वो ज्यादा हो उसके लिए ये लफ्ज जो है वो इस्तेमाल किया जाता है, उधेड़ उम्र के लिए। तीन का लफ्ज जो है ये आयत नंबर 110 में है, और तीन कहते हैं मट्टी को। अब आप देख लीजिए कि मट्टी, मट्टी के लिए भी कुरान में मुख्तलिफ लफ्ज इस्तेमाल हुए हैं। जी कोई लफ्ज बताएं? हाँ, सईदा, शाबाश, पाक मट्टी को कहते हैं, और सईदन तो ये पाक मट्टी। हाँ जी, और बताएं कोई लफ्ज मट्टी के लिए? तो एक लफ्ज है तोराब, जो खुश्क मट्टी होती है जिसमें नमी नहीं होती, हवा उसे उड़ाई फिरती है। दूसरा इसका दर्जा है तीन का, तो ये या नून यही इसका मादा है। गीली मट्टी को कहते हैं मगर इसमें भूसा ना हो, खा इससे पानी की रुतूबत खत्म हो जाए तो भी सूखे कीचड़ को भी तीन ही कहा जाएगा। तो पहले वो गीली मट्टी थी जिसमें भूसा नहीं, जब तक गीली थी तब भी वो तीन थी, वो गीली जो थी वो उसके बाद खुश्क हो गई, और सूखा जो कीचड़ है उसके लिए भी ये लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है। वैसे मट्टी के लिए कुरान में 9 लफ्ज आए हैं। फिर है तहती, ये हा या हमजा इसका रूट है, और इसके मानी होते हैं शक्लो सूरत के। तो हैया शक्लो सूरत को कहते हैं, और इसी की फैमिली का लफ्ज है हैयत, उसकी हैयत कैसी है, बनावट कैसी है। इसकी फैमिली के जो है वो अगर आप और लफ्ज भी जानना चाहती हैं तो आप देख लें कि सबसे पहला लफ्ज तो यही है हैयत का, किसी चीज की रफ सी इब्तदाई शक्लो सूरत को कहते हैं, खा ये शक्ल महसूस हो रही हो या माकूल, वादी तौर पर मौजूद हो या जहन के अंदर हो। तो जो महसूस होगी तो क्या है कि वादी तौर पर नजर आ रही है, माकूल यानी अकल से कि जहन के अंदर है। तो हैयत, हियत किसी चीज की हालत कैफियत शक्लो सूरत के लिए इस्तेमाल होता है। दूसरा शक्ल, दूसरा लफ्ज शक्ल का है कि शक्लो सूरत में मुशाबे होना। फिर इसी तरह तीसरा सूरत है, किसी मादी चीज के जाहिरी खदोखाल जिसे पहचाना जा सके और उसका इम्तियाज हो सके। चौथा जो है तमसाल है, तमासील, दूसरी चीज की शक्लो सूरत इख्तियार करना, सीधा खड़ा करना, ये इस्तेमाल किया जाता है। तो कैर का लफ्ज ये इस्म जिन्स है, परिंदों उड़ने वालों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इज्न, बेइज्नी इसका रूट है, हमजा दाल नून इज इजाजत को कहते हैं। फतन फखू इसका रूट है नून फा खा, और इसके मानी है फूंक मारना, फूंक मारना। और इसकी फैमिली का लफ्ज आप बहुत कसरत से सुन चुकी है, नफका उला नफका सानिया, कि पहली दफा जब सूर फूंका जाएगा और उसके बाद जो है जब दूसरी दफा सूर जो है वो फूंका जाएगा। तो फूंकना, और इसका आम इस्तेमाल होता है, पेट के फूलने के लिए भी इस्तेमाल होता है। मनफूखुन, बड़े पेट वाले मोटे आदमी को कहते हैं, क्यों? किसी के जिस्म में जैसे फूंक मारकर उसमें हवा दाखिल कर दी गई, इतना वो मोटा है ऐसे लगता है उसके जिस्म में हवा भरी हुई है, तो मोटे को क्या कहते हैं? मनफूख। इसी तरह मिनफाखुन, लोहार की धुनकी को भी कहते हैं धुनकनी, क्योंकि लोहार जो है वो क्या करता है कि जब वो अपनी भट्टी जला रहा होता है तो फूंक मारता रहता है। फिर इसी तरह नाकूर, नकरा, ये लफ्ज भी जो है वो फूंकने मारने के लिए इस्तेमाल होता है, लेकिन किसी बजने वाली चीज में फूंक मारकर जो है वो बजाना, जो अंदर से खाली हो, जैसे विगल है, सूर है, और तीसरा है नफासा। नफासा जो है थोड़ा सा उगलना, झाड़ फूंक करना, जहर उगलना, वमिन शर्रिन नफासाती फिल उकद। और चौथा है अतफा, फूंक मारकर चिराग बुझा देना। युरीदून अलयुतफिउ नूरल्लाहि बिअफवाहिहिम, ये भी आप पहले भी पढ़ चुकी हैं, तो एफा हमजा तफा फूंक मारना। वा तुब्रेउ, तुब्रेउ का लफ्ज जो है ये पहले भी आप पढ़ चुकी हैं, इसका रूट क्या है? बारा हमजा, शाबाश, इसका रूट है बारा हमजा, और इसके मानी होते हैं बरी करना। जैसे जो है वो तंदुरुस्त करना, चंगा करना, ठीक करना, सूरत बरात, सूरत तौबा को कहा जाता है। उसने मुशरिकीन से बरात, जैसे बरी उज़्ज़िमा होने का ऐलान किया गया है। एक तो ये ना किसी के अमल से बरी हो जाना, और एक ये कि जैसे किसी को बरी करना, उसको दुरुस्त कर देना, ठीक कर देना, बीमारी ठीक करना। अल अकमहा, अकमहा जो है ये मादरजात अंधे को कहते हैं, ऐसा अंधा जो माँ के पेट से ही जो है वो अंधा पैदा हुआ है। कुरान में अंधे के लिए आपने तीन लफ्ज पढ़े हैं, एक है आमा जो कि आंखों का अंधा है, इसकी जमा है उमियुन, उमियुन आप पीछे पढ़ चुकी हैं। दूसरा है अकमहा, और अकमहा का लफ्ज जो है ये ऐसे अंधे के लिए इस्तेमाल किया जाता है जो माँ के पेट से ही जो है वो अंधा पैदा होता है, मादरजात अंधे को कहते हैं अकमहा। और तीसरा लफ्ज है अमीहा, और ये दिल के अंधे को कहते हैं। अल्लाहु यस्तहज़िउ बिहिम व यमुद्दुहुम फी तुगयानिहिम या महून। तो आयन मीम हा, ये दिल के अंधेपन के लिए ये लफ्ज जो है वो इस्तेमाल किया जाता है। वल अबरसा, वल अबरसा ये इसका रूट है बारा स्वाद, और इसके मानी है कि बर्स, जिस्म पर सफेद दाग, और बर्स जो है इसकी जमा जो है वो उबरस है, जैसे यहां पे भी अबरस लिखा हुआ है। कफफ तू, कफफ तू, हाँ इसका रूप क्या है? कैफ, और ये हाथ की हथेली को कहते हैं। और हाथ की हथेली जो है ये किसके लिए इस्तेमाल होती है? जैसे आप किसी को पकड़ना चाहती हैं तो अपने हाथ की हथेली को इस्तेमाल करती हैं ना, तो हथेली का लफ्ज जो है रोकने के लिए, पकड़ने के लिए, इकट्ठा करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। आप सूरत आल इमरान में पढ़ चुकी हैं, उदखुलू फिस्सिल्मी काफा, तुम इस्लाम में पूरे के पूरे दाखिल हो जाओ। वहां पे ये पूरे के पूरे का मानी जो है वो दे रहा है। तो यहाँ पे कफफ्तु, मैंने उसको रोका, उसकी हथेली को पकड़ लिया, तो मैंने उसे रोक लिया। आयत नंबर 111 में औहैतु वौहाया वही, और यहाँ पे ये लफ्ज जो है इसके मानी है दिल में इल्का करना, इल्हा मुराद है। हवारीना, हा वोरा इसका रूट है, और ये जो है वो ईसा अलैहिस्सलाम पर जो ईमान लाने वाले और आपके जो मुखलिस दोस्त और साथी हैं उनको कहते हैं। सवाल ये पैदा होता है कि हा वो रा के मानी क्या है? इसके लुगवी मानी सफेदी के हैं। एक राय यह है कि इनका साथ देने वाले धोबी थे, वो कपड़ों को धोते थे, मार मार कर धोते थे ना, जब सफेद कर देते थे। दूसरे इसके मानी ये हैं कि असल में वो मुखलिस थे, उनके अंदर इखलास था, उनका दिल जो था वो इसी तरह साफ था कि जैसे उनके उसके अंदर कोई उनके दिल में मिलावट नहीं थी, तो इस वजह से उनका नाम हवारी पड़ गया। और फिर इन दोनों को मिलाकर जो हमें एक राय सामने आती है वो क्या है कि इनके इखलास और इनके सफेद कपड़ों की वजह से, वो जब दूसरों के धोते थे तो खुद भी उनके सफेद होते होंगे, तो उनका लकब जो है वो हवारी जो है वो पड़ गया। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथियों को क्या लकब दिया गया? सहाबी का लकब दिया गया, सोहबत, साथ देने वाले, तो ये हवारी। आयत नंबर 113 इसमें तत्मइन्ना, तत्मइन्ना, और तत्मइन्ना जो है इसके मानी है कि जैसे जो मोमबत्ती जब जलती है ना, तो मोमबत्ती की जो लौ है ना, वो जो आग उसकी जल रही होती है, वो बिल्कुल सही तरह अपनी जगह पर जब खड़ी होती है ना, हिलती नहीं है, तो उसके लिए ये लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है। इसी तरह जैसे बर्तन है ना, बर्तन जो है उसको अगर एक जगह जमा दिया जाए, खड़ा कर दिया जाए, वो अपनी जगह पे फिट हो जाए, उस वक्त भी ये लफ्ज जो है इस्तेमाल किया जाता है कि जैसे बर्तन का जम जाना, इसी तरह जो मोमबत्ती है, मोमबत्ती की लौ का सीधा होना, हवा चलती है तो लौ हिलती है ना, आप देखें कि उससे आग भी इधर उधर होती है, लेकिन उसका हिलना नहीं, एक जगह जो है वो रुक जाना। तो इसके माने फिर ये बताए जाते हैं कि ये है जैसे नफ्से मुतमईना को कहते हैं। नफ्से मुतमईना फिर कौन होते हैं? जो अपनी जगह पर जो है वो अकीदे के लिहाज से भी साबित कदम है और अमल के लिहाज से भी साबित कदम है, जमे हुए हैं, गड़े हुए हैं, रासिख हैं, अकीदा भी और उनका अमल भी, हालात का मदो जजर जो है वो उनको हिलाता नहीं है। इत्मीनाने कल्ब इन कुलूबुना, तो ये असल बात जो है वो अहम है। इसका रूट है तोए मीम हमजा नून, तोए मीम हमजा नून, इत्मइन्ना, इत्मीनाने कल्ब के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और आयत नंबर 114 इसमें मायदा का लफ्ज आ गया, मायदा, इसका रूट है नीम या दाल, इसके मानी है झुकना, खाने और ताम के लिए भी इस्तेमाल होता है, ये दस्तरखान के लिए भी इस्तेमाल होता है। ईदन, ऐन वो दाल, दोहराना, दोबारा करना, ऊद कराना, जैसे अब ईद क्या है, वो ऊद करा, बार बार आती है ना, पलट कर आती है, इस तरह ये इयादा भी इसी की फैमिली का है। और इसी तरह ये ईद का लफ्ज खुशी के लिए इस्तेमाल किया जाता है कि वो उसमें फिर खुशियां हैं, मुसर्रत है। आयत नंबर 115 अज़े बहू अजाबन और अज़े बहू, तीनों का रूट एक ही है, ऐन ज़ालबा, लफ्जी मानी है चखना, और अजाब के लिए भी इस्तेमाल होता है कि वो चखाया जाएगा, अजाब में उनको डाला जाएगा। आयत नंबर 116 इसमें जो है वो आप देखें तो कोई भी मुश्किल लफ्ज नहीं है। आयत नंबर 117 और इसमें भी कोई मुश्किल लफ्ज नहीं है, लेकिन तवफ़ैतनी अहम है इस एतबार से कि कुरान में वफात के तीन मानी जो है वो बयान किए गए हैं। और तवफ़ैतनी का रूट क्या है? वफाया, वफा करना, और पूरा पूरा जो है वो देना या पूरा पूरा उठाना। कुरान में ये लफ्ज जो है जैसे रफा उठाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, सूरत आले इमरान की आयत 55 और ये सूरत माईदा की जो आयत है 117 इसमें रफा के मानी में है, उठाने के मानी में। दूसरा ये लफ्ज जो है ये वफात का, ये मौत के मानी में इस्तेमाल किया जाता है, सूरत जुमर आयत 42 इसकी दलील है, वल्लाहु यतवफ्फल अनफुसा हीना मौतिहा। اور تیسرا اس کے معنی نیند کے ہیں. یہ سورت الانعام کی آیت 60 میں آپ پڑھیں گی, وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُمْ بِاللَّيْلِ, تو وہاں پہ یہ نیند کے معنی میں استعمال ہوا ہے, کیونکہ نیند میں بھی کیا ہے کہ تھوڑی دیر کے لیے جو ہے وہ انسان جو ہے ایسے ہی ہے جیسے کہ اس کی موت ہو جاتی ہے, کہ زندگی کی بجائے وہ موت کے قریب ہوتا ہے. الرقیب را قاف با, اور ویسے یہ رقبت ان گردن کے لیے استعمال ہوتا ہے, اور رقیب جو ہے یہ عاشق اور محبوب کے درمیان میں ایک تیسرا کردار ہے, اور وہ کیا کرتا ہے کہ ان کی حرکات پر گردن اٹھا اٹھا کے نظر رکھتا ہے, پھر کبھی ادھر بات کی کبھی ادھر بات کی, رقیب. تو رقبہ گردن سے یہ لفظ استعمال ہے, اور رقیب کیا ہے پھر نگرانی کے معنی دیتا ہے, نگرانی. شہید شین ہادال شہد, یہ لفظ استعمال ہوتا ہے موجود ہونا, اور اس کے معنی گواہی کے ہیں, گواہ. اور اب آپ دیکھیں کہ ایک گواہی تو یہ ہے کہ آپ موجود ہیں تو آپ گواہ بن گئے. ایک کیا ہے کہ شہید جو دنیا سے چلا جاتا ہے اس کے لیے بھی ہوتا ہے کہ اس نے وہ جس عقیدے پر ایمان لایا تھا نا, جان کی قربانی کر کے وہ اس کی وٹنس بن گیا, اس کی گواہی دے دی. پھر آپ دیکھیے کہ آیت نمبر 119 ہے, اس میں جو ہے وہ الصادقین, صاد القاف, الصادق واحد ہے, صادقین اس کی جمع ہے, پھر صدق اس کا بھی یہی روٹ ہے. پھر آپ دیکھیں تو خالدین اور ابدا, دونوں یہ لفظ جو ہیں یہ خالد خا لام دال, اور یہ لفظ بھی جو ہے وہ استعمال ہوتا ہے ہمیشگی کے معنی میں, اور ابدا کا لفظ جو ہے یہ بھی ہمیشگی کے معنی میں استعمال ہوتا ہے نا, ہمیشہ ہمیشہ. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پھر ان کے اندر کیا مناسبت پائی جاتی ہے دونوں کے اندر, کہ خلدہ جو ہے اس میں آپ یہ بات یاد رکھیں کہ یہ لفظ اصل میں ہمیشگی کے لیے نہیں بلکہ کسی چیز کا اپنی ابتدا سے عرصہ دراز تک اگر اس میں کوئی تبدیلی پیدا نہ ہو تو اس کے لیے استعمال ہوتا ہے. خلدہ کے معنی کیا ہے؟ طویل مدت تک کسی چیز کا بلا تغیر ایک ہی حالت میں رہنا, اس کی حالت میں کوئی تبدیلی نہیں اور طویل مدت تک وہ ایک ہی حالت میں ہے. پھر اس کے ساتھ جب ابدا کا لفظ آتا ہے تو وہ تاکید کے لیے آتا ہے, اسی کی تاکید کے لیے. اور کبھی ہوتا ہے نا کہ ایک طویل مدت, تو وہاں ابدا کا لفظ نہیں آتا, جہاں پہ تاکید مقصود ہوتی ہے نا وہاں پہ پھر ابدا کا لفظ جو ہے وہ استعمال ہوتا ہے, جیسے ابدی طور پر, پھر ہمیشگی کے معنی یہ دینے لگتا ہے. اور الفوز فاوز فوز کامیابی کو کہتے ہیں, کامیابی. اور آپ دیکھیں کہ کامیابی کے لیے قرآن میں مفلحون کا لفظ استعمال ہوا ہے, مفلحون کا. اور جو لفظ ہے جیسے یہاں پہ جو ہے یہ فوز کا لفظ جو ہے وہ استعمال ہوا ہے, تو مفلحون تو ایسی کامیابی کو کہتے ہیں جو بڑی محنت مشقت کے بعد جو ہے وہ انسان کو ملتی ہے. فلاح, اس کے اندر تین باتیں ہوتی ہیں نا, پھاڑنا, جیسے زمین میں کسان گوڈی کرتا ہے زمین کو پھاڑتا ہے, پھر دوسرا یہ کہ جب وہ دانا نکلتا ہے اسے پودا بننے لگتا ہے تو کامیابی ہے ایک, پھر یہ کہ اس کے اندر بقا بھی پائی جاتی ہے کہ جب وہ اپنی کامیابی دیکھتا ہے, جیسے فصل پک گئی ہے تو اس کی بقا یعنی اس کا اور آگے بڑھنا پھلنا پھولنا, تو اس سے وہ فائدہ اٹھاتا ہے, اس سے پیسے حاصل کرتا ہے. تو اس میں جو ہے معنی کیا ہے کہ ایسی کامیابی جس تک پہنچنے کے لیے محنت مشقت درکار ہو, اور فوز جو ہے فاوزے ایسی کامیابی کو کہتے ہیں کہ کسی مصیبت سے بچ جائے کوئی اور ساتھ ہی ساتھ کسی محبوب چیز تک پہنچ جائے, جیسے سلامتی کے ساتھ بھلائی حاصل کر لینا. آپ اس کو یوں بھی کہہ سکتی ہیں کہ ایسے عمل کے لیے آتا ہے جس میں کوتاہی کا نتیجہ ہلاکت ہے اور کامیابی پر بہت زیادہ انعام ملے, کہ اگر وہ کامیاب نہ ہوتا ہلاک ہوتا, تباہی بربادی تھی, اور کامیاب ہو گیا تو بہت سے انعامات ہیں. آپ سورۃ آل عمران میں آیت 185 میں پڑھ چکی, فمن زحزح من النار وادخل الجنت فقد فاز، جو شخص آگ سے دور رکھا گیا اور جنت میں داخل کیا گیا وہ مراد کو پہنچ گیا. آیت 120 اور اس میں آخری لفظ جو ہے وہ قدیر کا ہے، قدر سے ہے. قدر کے معنی اندازے کے بھی ہیں اور اس کے بعد ہی جو ہے وہ اندازہ کرنا. تو تقدیر ہے نا، اللہ کے پاس قدرت ہے نا، اور دوسرے اس کے معنی اس کے ساتھ ہی اختیار کے بھی ہیں کہ اللہ سب کچھ کرنے پر اختیار رکھتا ہے.